एस डी सिंह साहब यहाँ ट्रेन क्लास में आए थे
और कौन सा रहा होगा?
सन मेरा ख्याल है 73 या 74 ऐसे कोई साल सन था। एच डी सिंह के सन नहीं हमें याद है, लेकिन ये हमें खूब मालूम है कि सोठियाना से हमारी उनकी बहुत अच्छी जान पहचान थी, बहुत मतलब यहाँ तक क्योंकि गोंडा में बलरामपुर में हमारा ननिहाल है, तो गोंडा के ननिहाल के नाते वो हमसे अबे तबे भी कर देते थे, हमको भी बुरा नहीं लगता था। अच्छा, और जब वो बेलाया गए, पहला चार्ज मिला उनको तो बेलाया रहे, उसके बाद सोनारीपुर आए तो यहाँ जो है खूटा वगैरह गड़वाए, चारों तरफ रायनो रखने के लिए फैंस बनने लगा। अचानक जब फैंस वैंस तैयार हो गई तो एक दिन वो मोटरसाइकिल से आ रहे थे अपने दफ्तर बाबू के साथ, तो चांस की बात एक मैदान पड़ता है।
जिस दिन वो आ रहे थे आपने बताया कि वो आपसे ही मिले थे?
हाँ, हमसे वो पान खा के आए थे।
हाँ, तो क्या कहा था उन्होंने?
उन्होंने कहा कि कट्टू भाई पान खिलाओ, तो हम कहें पान डली है ही नहीं, कहें हम समझ गए अबे साले पान खाते हो डली है ही नहीं, अच्छा लो 50 रुपया कल डली मंगवा लेना। हम कहें ठीक। इतने में मेट जो लेबर चला रहे थे वो लोग आ गए, तो लेबर ओबर से बातचीत किए और लेबर चली गई। ये अपना मोटरसाइकिल से दफ्तर बाबू और ये वापस आ रहे थे सोनारीपुर, तो क्या हुआ कि किसी ने इनको हाथ दिया, ये वहाँ रुके वही लगभग 3-3:30 के का टाइम था, ये आराम से आए वहाँ हाथ दिया ये रुके, ये मेरा कह ले 26 या 27 तारीख की बात है।
महीना
मेरे ख्याल से
मार्च
या अप्रैल ऐसे कुछ था, कोई बात नहीं, ये वहाँ रोक दिए मोटरसाइकिल। तो दफ्तर बाबू चारों तरफ देखे कि ये रोक क्यों दिए, दफ्तर बाबू को कोई दिखाई नहीं पड़ा, ये चले आए सोनारीपुर। कहा दफ्तर बाबू, कहने कि इस्तीफा लिख दो मेरा। कहें क्यों? तो वो वारदात बताने लगे कि किसी का सर कटा है, किसी का पैर कटा है, किसी का हाथ कटा है, और वो कह रहे हैं जो हाल मेरा है यही तुम्हारा होगा। अरे दफ्तर बाबू ने कहा क्या बकते हैं रेंजर साहब, आप पढ़े लिखे हो करके इन बातों का ध्यान दे रहे हैं, चलिए आप यहाँ साइन कर दीजिए। एक कोरा कागज़ दिए, कहा यहाँ साइन कर दीजिए और हम आपकी छुट्टी लिखे दे रहे हैं। कहें ठीक। तो रेंजर साहब को सोनारीपुर स्टेशन शाम के टाइम लोग लेके गए, जो मैलानी से ट्रेन आती है उस पे इनको बैठा दिया, ये सीधे गोंडा जाती थी। दफ्तर बाबू चले आए। अब दफ्तर बाबू जिससे बताऊं सब हंसाएं कि ये क्या, कहने भाई रेंजर साहब को मिले लो। कहने अरे ख्वाब ख्याल है, कहाँ चक्कर में पड़े, मतलब उनकी बात को कोई विश्वास नहीं किया। अब रेंजर साहब वहाँ पहुँचे तो अपने बाप से बताया कि हम इस्तीफा दिए दे रहे हैं, ये नौकरी नहीं करेंगे। क्यों? पूछें क्या बात? कहीं ऐसा ये हुआ मेरे साथ। उन्होंने कहा बेटा ये सब कुछ नहीं, तुम अपनी ड्यूटी पे जाओ और हम 10 तारीख तक अगले महीने में तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा देंगे, ये मेरा वादा है। इनके ससुर को पता चला, वो भी आए, उन्होंने भी यही बात कहा कि हम ट्रांसफर करवा देंगे, आप परेशान ना हो।
इनके बाप जो थे वो एडवोकेट थे,
वकील थे, सरकारी वकील थे, और इनके ससुर भी सरकारी वकील थे। तो इन लोगों ने जब कहा तो वो फिर मेम साहब को साथ में लेकर के आए। एक बच्चा लड़का था, छोटा सा, 2-2.5 साल का, और उसको लेकर के वो आए। तो चांस की बात 3 तारीख या 2 तारीख को ये चेक भुनाने गए। तो दुधवा से सोनारीपुर हम और नसीम भाई गए इनको पहुंचाने सोनारीपुर शाम को। तो इन्होंने हम लोगों को चाय पिलवाया, 100-100 रुपया हम लोगों को दिया। कहने लगा कि जाओ अब तुम लोग, और अब जब ज़रूरत होगी तब बुलाएंगे। नमस्ते किया, हम लोग चले आए। इन्होंने 2 तारीख जो पैसा लाए वो स्टाफ की तनख्वाह थी और लेबरों का पैसा था। उन्होंने स्टाफ को बुलाया, रात ही में तनख्वाह बांट दिए। अब एसडी सिंह साहब सुबह ट्रक आ गया वो गेंडा लेकर के, तो ये गए उसको पैसा देने ट्रक वाले को, और गेंडे के लिए चना वना मंगवाए थे, वो सब स्टाकिट बनी हुई थी, ट्रक से गेंडा उतरे स्टाकिट में कर दिए गए, और उनके खाने पीने का इंतजाम करके ये वहाँ से वापस लौटे। 3 या 4 तारीख थी, और ये वहाँ जब आए तो सलूकापुर में हमसे इन्होंने पान खाया, पान खा के और ये चले आए सोनारीपुर के लिए। सोनारीपुर से 1 या 1.5 किलोमीटर पे एक खलिया पड़ती है।
परमेश्वर को कैसे लिया वो भी हाँ।
परमेश्वर पीछे बैठ गया इनके।
हाँ, तो उसमें क्या हुआ तो वो भी आप बताइए पूरा किस्सा। अभी जो आपने बताया था उनको कि परमेश्वर जो थे वो वहाँ पे थे और वो जाना नहीं चाहते थे वो।
अरे क्या वो? परमेश्वर का ये था कि उसके बुखार आ गया।
वो ड्राइवर थे,
ड्राइवर थे परमेश्वर। तो परमेश्वर ने कहा कि साहब हम नहीं जाएंगे, मेरे बुखार बहुत तेज है। उन्होंने कहा साले हम समझते हैं बुखार क्यों आया है, चलो आओ बैठो सोनारीपुर चलो, हम तुम्हें 2 दिन के लिए छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। वहाँ से आए, इनको महतिया वगैरह मिल गए, कहाँ तक सड़क बन गई। कहें साहब खलिया हमने पार कर दिया है। कहें ठीक। इन्होंने खलिया के चक्कर में, जबकि उस पर रेंजर साहब नहीं जाते थे, जब इन लोगों ने बताया कि सड़क वहाँ तक बन गई है लेबरों ने और मेट ने, तो ये उस सड़क पे गए।
आमतौर पे किस सड़क से जाते थे?
ये जाते थे छोटी पलिया होकर के, ये घूम के जाते थे, और सबको समझाते थे कि सड़क पे टाइगर वो आदमखोर घूम रहा है, इस तरफ कोई मत जाना। अच्छा, 15-20 आदमी जब हो जाते थे, हल्ला मचाते हुए चले जाते थे, टाइगर हट जाता था। अब रोड हो गई सन्नाटे की, और जब रेंजर साहब वहाँ निकले तो खलिया टाइप की थी और उसमें था कीचड़। इन्होंने मोटरसाइकिल डाउन किया घुमाने के लिए, टाइगर उसी घास में बैठा था, परमेश्वर को पकड़ लिया। जब इनकी गाड़ी डिसबैलेंस हुई तो इन्होंने पलट के देखा शेर, तो ये हड़बड़ा गए। अगर ये भगा लेते मोटरसाइकिल तो शायद अल्लाह बचा ही देता इनको। ये जाके खंती में गिर गए, मोटरसाइकिल लेकर के अगली खंती में गिर गए, और ये सामने वाले जंगल में भाग गए। वहाँ से जब ये भाग के गए तो आगे देखा पानी, ये फिर दाहिने कट गए और आ गए ये सड़क पे, लगभग एक एक फल्लांग का फैसला रहा होगा। टाइगर ने इनको भागते देखा सड़क पे, परमेश्वर को छोड़ दिया, टाइगर इनके पीछे दौड़ पड़ा। अब वहाँ पुलिया बनी है इस टेम पे जहाँ इनको पकड़ा। अब रात में वाले चलने लगा कि रेंजर साहब अभी नहीं आए हैं क्या, वहाँ रुक गए हैं? तो स्टाफ में थोड़ा हड़कंप मचा कि यार बदमाश ने तो नहीं पकड़ लिया कहीं, क्या बात हुआ, रेंजर साहब गए तो कहाँ गए? राम लखन सिंह साहब को, वो दुधवा में थे, उनको खबर मिली, वो रात में गए तो
दुधवा में थे, खीरी में,
दुधवा में
यहीं पे,
हाँ यहीं थे। तो वो जब वहाँ पहुँचे तो सड़क पे ढूंढे, रात में क्या दिखाई दे, कोई बात नहीं। मैम साहब को समझाया कि बेटा कुछ काम जरूरी है, इसलिए रेंजर साहब को मैंने वहाँ रोक दिया है, और आप लोग खाना वाना खाएं, रेंजर साहब सुबह आएंगे। और वहाँ से ये लोग चले आए। अब जब सुबह गए तो कई गाड़ियाँ रवाना हुई ढूंढने के लिए। तो एचडी सिंह साहब, वो नेपाली एक जूता आता है जिसमें फीता नहीं है, वो मुलायम जूता होता था, चलने में बड़ा आराम देता था, वो मंगाए थे वो। तो एक जूता पुलिया के पास पड़ा था, पहले पुलिया नहीं थी, पहले ऐसे खलिया थी, वहाँ पे एक जूता मिला। एक जूता जब वो टाइगर ने इनको खींचना शुरू किया, जब मार दिया, परमेश्वर को नहीं छेड़ा, और वहाँ से खींच के उनको वहाँ पे लाया जहाँ परमेश्वर की लाश पड़ी थी, तो दोनों जूता इनके पैर से निकल गए और रान का हिस्सा और कुछ सीने का ये खाया था।
जूता किसने देखा सबसे पहले?
नसीम भाई ने देखा, गाड़ी यही चला रहे थे हम लोग, तो हुवल्ला में थे, हाँ, क्योंकि पगमार्स उसके टाइगर के दिख गए, तो ये हुआ आदमकोट टाइगर है, हल्ला मचाओ, तो सब हल्ला हल्ला मचाने लगे। इतने में अर्जुन सिंह साहब आ गए, वो भी देखते भालते रहे, सब लोग देख भाल के उसे, और आखिर में वो टाइगरेस मार दी गई। अब राम लखन सिंह साहब भी राइफल लिए थे, अर्जुन सिंह भी लिए थे, तो राम लखन सिंह ने टाइगर मार दिया, उसी पे अर्जुन सिंह ने भी गोली चला दी, दोनों गोली, दोनों राइफल की गोली लगी। फिर नीचे उतरे, नीचे उतरे, देखा लाश उठाई गई, फिर उनका, रेंजर साहब का, तो रेंजर साहब की लाश और परमेश्वर की लाश, दोनों दुधवाई। और रेंजर, जब मेम साहब ने सुना कि रेंजर साहब को टाइगर ने मार दिया, तो वो गिरी, बेहोश हो गई। अब मालिक जाने किसने उनके धोती के पेच से चाबी निकाल लिया और तिजोरी खोला, जितना पैसा था सारा पैसा निकाल लिया,
सोनारीपुर में।
अब उसमें मेम साहब के दो बूंदे रखे थे, बूंदे मेम साहब ने रख दिया होगा। तो जब एचडी सिंह साहब की लाश गोंडा जाने लगी, तो उन्होंने कहा, राम लखन सिंह साहब ने, कि बेटा ऐसा है कि तिजोरी की चाबी दफ्तर बाबू को दे दो, ये गवर्नमेंट का पैसा है, दफ्तर बाबू देख लिया। तो जब तिजोरी खोला गया तो सफा थी तिजोरी। दफ्तर बाबू ने वो दोनों बुंदे उठा के मैम साहब के हाथ में दे दिया और वहाँ रोने वाले ज्यादा थे, जैसे हमारे ही बहुत करीब थे तो हमें तकलीफ हुई, इस टाइप के बहुत लोग थे। राम लखन सिंह साहब थे, रिंजा साहब के ससुर थे, रिंजा साहब के बाप थे, उनके भाई लोग थे, काफ़ी लोग थे। तो ये हुआ कि बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तिजोरी तुमने वो चाबी तुमने दे दिया, ये किसी स्टाफ की है बदतमीजी,
रामलखन साहब ने कहा,
और किसी स्टाफ की है। फिर उनकी लाश जो गाड़ी लाए थे उस पे लेकर के वो लोग चले गए, जो कागज वागज होता है वो सब लिखा पढ़ी हुई, फिर वो चले गए। फिर उन क्या हुआ, एस डी सिंह साहब के परिवार के लोग सामान जो उनका था वो बाद में ले गए, लेकिन उस टाइम पे उनकी लाश ही लेके गए। परमेश्वर की लाश राय बरेली गई, ये समझ रहे थे कि घर वाले सपोर्ट करेंगे, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। जिस कपड़े में यहाँ से लपेट के भेजा गया था उसी कपड़े में वो जला दिए गए। कोई नहीं, परमेश्वर का एक लड़का है और यहाँ रहता है मुख्यालय में, इनकी बीवी खत्म हो चुकी थी
पहले
नहीं बाद में खत्म हुई, लेकिन एक लड़का है मुख्यालय में रहता है, बाबूगिरी करता है। तो कहने की यह है कि पुरानी स्टोरियाँ तो बहुत हैं।
तो और फिर आपने बताया था कि उसके बाद फिर जब ये चले गए तो फिर वहाँ पे कुछ कुछ आवाज़ें आने लगी और लोगों ने कहा
कि एक श्यामलाल था अर्दली, उनका ही अर्दली था, वो पुजारी टाइप का था, वो जा रहा था शंकर जी के मंदिर पे पूजा करने, उसका क्वार्टर रेंज क्वार्टर के आगे था। तो अब मंदिर है यहाँ जहाँ पे दफ्तर है, तो चांस की बात जब वो जा रहा था तो उसको रेंजर साहब मिल गए, उसका गला पकड़े और ऊँट उठा दिए कि क्यों भाई कहाँ जा रहा है, कहीं साहब पूजा करने जा रहे हैं, तो उन्होंने छोड़ दिया, वो गिरा और लोटा उटा लेके भाग गया। तो उसने कहा, तो दफ्तर बाबू ने कहा, हाँ आवाज़ तो हमने सुनी, लेकिन वो आवाज़ थी किसकी? दफ्तर बाबू लोगों से शिनाख्त करने लगे तो उनको खिड़की पे किसी ने आवाज़ दिया, रेंजर साहब थे या कौन थे, कोई भी था, आवाज़ दिया, दफ्तर बाबू घबरा गए। अगले दिन, उसके तीसरे चौथे दिन रेंजर साहब की लाश जाने के बाद दफ्तर बाबू छुट्टी लेके गए तो लौट के नहीं आए सोनारीपुर, ट्रांसफर करवा लिए। तो कुछ न कुछ सच्चाई तो होगी।
और तो वो दफ्तर बाबू को आके मतलब वो रात में खटखटाते थे, क्या होता?
किसी ने दरवाजे पे आवाज दिया
दफ्तर बाबू के
दफ्तर बाबू, तो वो कह रहे हैं कि ये रेंजर साहब की आवाज़ थी। अच्छा, उसी दरमियान में हम लोग रेस्ट हाउस में रुके, हम लोगों को कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। तो क्योंकि आदमी गया, देखिए है क्या कि आवाज़ कौन दे रहा है कौन नहीं। और आज का ये जंगल थोड़ी है, बहुत पुराना जंगल है, पता नहीं कितने को टाइगर ने खाया होगा। तो वो रूहें हमारे वहाँ कहा जाता है कि गलत मौत, जैसे फांसी लगा लेना, कुआं में कूद जाना, अपने आप को आग लगा लेना, किसी का कत्ल कर दो, उसकी रूहें भटका करती हैं, उसको ना जगह मिलता है जमीन पे और ना आसमान पे, वो रूहें भागा करती हैं सकून के लिए कि हमें सकून मिले। लेकिन नहीं, जब उनका टेम पूरा हो जाएगा कि 40 साल 60 साल 80 साल जब उम्र पूरी हो जाएगी उनके रूहों को सकून मिल जाएगा, उससे पहले उनको सकून नहीं मिलेगा। तो ये सब हुआ। एक पत्रकार महोदय थे, उन्होंने हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब से कहा कि साहब हम सोनारीपुर रुकना चाहते हैं। कहें क्यों? कहें वहाँ क्या करोगे? तो कहें कि जब दिल बहलाएंगे वहाँ चले जाएं। उन्होंने कहा एक बात सुन लो, जाओगे सोनारीपुर लेकिन डरना मत, क्योंकि हम देख चुके हैं जब रात होती है तो एसडी सिंह साहब बावर्दी आते हैं और जय हिंद सलाम करते हैं। तो वो पूछेंगे कि साहब कोई दिक्कत हो बताएं, कोई सामान की कमी तो नहीं है, तो डरना मत। डर गए तो भैया मुसीबत हो जाएगी। अब जाने के लिए हम आपको मना ही नहीं करते हैं और आप पत्रकार हैं, आपको हम कैसे मना कर दें? उन्होंने कहा नहीं साहब, हम हाथ जोड़ रहे हैं, हम सोनारीपुर नहीं जाएंगे, हमें दुधवम रुकवा दें। तो उन्होंने हट में रुकवाया। तो वो क्या नाम है उनका, उनसे हमारी अच्छी बनती थी पत्रकार महोदय से, सलीम शुक्ला उनको लोग कहते हैं। वो उन्होंने ये बात हमको बताई कि हम गए थे डीडी साहब के पास, तो उन्होंने ये बात बताई हमको। तो भैया सोनारीपुर जाने की हमारी हिम्मत नहीं पड़ी तो यहाँ रुक गए। हमने कहा चलो रुकना है रुक जाइए, क्या है, हो सकता है भाई आते हों, लेकिन अभी कोई ऐसा प्रूफ हमें नहीं मिला कि हकीकत क्या है। लोग फर्जी रमल बनाते हैं या सही है। अच्छा हमें तो नहीं मिले, जबकि हमसे पान भी खाते थे। अबे रोटी बना यार, मोटी रोटी साले बनाओ, जब मोटी रोटी और चटनी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा सा वो डालडा है? नहीं साहब डालडा नहीं। अच्छा तेल लगा देना। तो रोटी में तेल लगा दिए तो वो तुरंत नहीं खाते थे, उसको 15-20 मिनट रख देते थे, जब वो तेल को पी लेती थी रोटी तब वो खाते थे। और आधी रोटी या एक टुकड़ा खा लिए और कहें कि रोटी बड़ी गजब की बनी तुम्हारी, खा लेना, अब हम नहीं खाएंगे। तो जितना खाना होता था तोड़ लेते थे, अपना खाए पानी पिए चल दिए। तो उनके साथ हमको यही नहीं लगता था कि हम रेंज अफसर के साथ हैं। उनसे कहा करते थे कि साहब जब आप एसीएफ बनेंगे या डेफो बनेंगे तो भूतों की तरह अकेले रेस्ट हाउस में आप पड़े होंगे। कहीं ना अगर बेटा मैं यहाँ रह गया तो साले तुम लोगों को अपने पास रखूँगा कि यहाँ बैठो, जब हम सो जाए तब जाना। अरे हम कह हम ये चौकीदार थोड़ी हैं आपके, हैं हम महावत हैं। तो वो हंस देते थे, मतलब कभी ना उनकी बात को हम बुरा माने या वो हमारी बात बुरा मान जाए, कुछ नहीं, हंस देते थे। मस्त आदमी, बहुत नेक आदमी।
अब उनके बेटे शायद फिर पुलिस वगैरह में
है। हाँ, पुलिस में है शायद, शायद हमें एक ही बार मुलाकात हुई तो पता चला कि वो मिलिट्री में या पुलिस में है।
वो आए थे यहाँ वापस?
हाँ, एक बार आए थे, लेकिन वो वर्दी में नहीं थे, सादे कपड़े में थे। उनकी माँ थी, उनकी बहन थी, आए रायनो एरिया में। हम लोग बहुत कोशिश किए कि रायनो देख आओ भैया, कहीं नहीं, हम आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं, रायनो देखेंगे बाद में आके। तो वो नहीं गए, जबकि सलूकापुर की बात थी। कुछ नहीं, जहाँ पे सोनारीपुर आए, रेस्ट हाउस वगैरह जहाँ रहते थे, रेंज क्वार्टर देखा, वो सब देखा अपना।
वो जो स्मारक बनाया गया, वो भी कहते हैं कि इसलिए बनाया गया था क्योंकि लोग डर रहे थे, तो उनके मतलब कि रूह की शांति के लिए इस तरह से बनाया गया था।
अल्लाह बेहतर समझे, हो सकता है कि, लेकिन वहाँ पर पत्थर क्यों लगाते? अब वो सड़क का पूरा सोनारीपुर से और सलूकापुर तक, रोड का नाम है SD सिंह रोड। तो अब ये है कि देखिए, आत्मा भटकती तो है ये। उस समय उन्होंने किस देवता और किस देवता देवी को नहीं याद किया होगा। एक फलांग जब वो भागे, अगर ये कहीं वहाँ कहीं पेड़ पे, जवान लड़के थे, ये किसी नए पेड़ पे चढ़ जाते तो शायद अल्लाह इनको बचा लेता। लेकिन ये इतना घबरा गए थे कि वो यूं जाए कि ऐसे तिरछा सड़क पे निकले, और जिस वक़्त टाइगर इनके पीछे दौड़ा होगा, उस टाइम क्या मंजर रही रहा होगा, क्या मंजर रहा होगा, अल्लाह ही जाने।
सही बात
है। तो आदम को टाइगर, जबकि उस टाइगर को मारने के लिए अजीत नारायण सिंह आ चुके थे, ये मजगई एरिया में कई लोगों को खाया था।
कितने मारे?
उसने मेरे ख्याल से 5 या 6 मार दिए थे।
कितने पीरियड में, कितने दरमियाने में?
मतलब 5-6 महीने के अंदर। आखिर में जब गर्मी स्टार्ट हुई है, वो बरसात, तो ये हुआ कि अब ये अंदर चला गया, मजगई एरिया को इसने छोड़ दिया। तो जब पक्का हो गया कि चला गया, तो राम लखन सिंह साहब ने कहा, वो तो चला गया, अब क्या करेंगे आप? कहें फिर इसका मतलब हम वापस जाएं? कहें ना, आप चले जाएं। तो आए यहाँ, रात भर रुके। सुबह यहाँ से लखनऊ के लिए अजीत नारायण सिंह चले गए, और SD सिंह को उसने 3 या 4 महीने के बाद उसने मार दिया। मजगई में ये काफी हलचल मचाया, कई लोगों को खाया।
और वही लगता है उन्हीं की, मतलब ऐसा मानते होंगे कि रूहें जो थी इनको दिखी।
हाँ, वहां। और जब ये आया यहां, प्रवेश किया सुहेली नदी क्रॉस करके, इस पार आया, तो इसने कई बैलगाड़ी वालों को इसने मारा, क्योंकि उस टाइम पे ये था, गांव वालों को लकड़ी, घास ये दिया जाता था, तो गांव के लोग इसे ले जाते थे। तो जब जंगल में आए तो कुल्हाड़ी से लकड़ी काटनी पड़ेगी, घास काटना पड़ेगा, तो खट खट की आवाज हुई, टाइगर आ गया, पकड़ लिया उसने। जब शाम हुआ कहीं चलो चलो निकलो, फला आदमी गायब है। आप आवाज देने लगे, कोई आवाज नहीं, दहने बाएं ढूंढी तो घसीटन मिल गई। ये घास काट रहा था, यहां से टाइगर ले गया।
आपने हमें ये बताया था कि सोनारीपुर रेलवे स्टेशन पे भी आसपास वो घास के मैदान में लाइटें दिखती थीं?
नहीं, वो तो हमने बताया ना कि ये पुराना जंगल है और अच्छे लोगों को अच्छी रूहें दिखती हैं, मिलती हैं, दिखती हैं, ये सब होता है। सोनारीपुर हुआ, रेहटा हुआ, इस तरफ फुलवरिया है, इस तरफ तो इन सब जगह पे रूहें घूमा करती हैं भैया। तो चक्कर ये है कि इनका कोई ठिकाना नहीं कि कहाँ क्या दिख जाए। टॉर्च वगैरह तो अमूमन दिख जाते हैं। अब करीब 15-20 साल से हम कहीं जाते ही नहीं हैं। पहले 15-20 साल पहले जवानी थी, साइकिल चलाने की ताकत थी, तो साइकिल चलाया करते थे। साइकिल से दुधवा स्टेशन चले गए, डिगनिया चले गए। अरे आज नौटंकी हो रही है, आज तमाशा हो रहा है, साइकिल से चले गए और साइकिल से चले आए। अब 15-20 साल से साइकिल चला ही नहीं रहे। मोटरसाइकिल हमने खरीद लिया लेकिन चलाने का हमको नहीं पता है कि मोटरसाइकिल में कितने गियर होते हैं, लड़के चलाते हैं। अगर हमें पलिया जाना है तो उससे जाएंगे, लेकिन नौटंकी देखने जाते तो लड़के को लेके जाते, कितनी गंदी बात होती। इसलिए बच्चों को लेके हम कभी नहीं गए।
नौटंकी में क्या क्या होता था
प्रोग्राम? अरे नाच नाच गाना खेलते हैं लोग, नाच करते हैं, लेकिन ये सब बचपना जवानी में अच्छा लगता है। अब जैसे उम्र दराज हो गए, बच्चे जवान हो गए मेरे, तो हमको शर्म आएगी वहाँ, आह पापा इनको देखने आए हैं, तो ये गंदी बात होगी, ये समाज के गैर खिलाफ होगा, तो वहाँ क्यों जाओ, ऐसी जगह पे मत जाओ जहाँ बेइज्जती हो।
एक सेकंड पॉज ले रहे हैं।